Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. आप सबका स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर कार्तिक मास भाग्यशाली है जो इस मास में भगवान का दर्शन और दामोदर को रोज दीप अर्पण करते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे दामोदर अष्टम के पहले श्लोक के ऊपर, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। इतने के ऊपर ही बात की थी कि ये मंगलाचरण है। हरे कृष्ण, नमाम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान स्वामी नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारण निर्विशेषण्यवादी पाश्चात देशकार। तो सत्यव्रत मुनि भगवान के रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। पहली लाइन लीला की में रूप माधुरी क्या है? भगवान की रूप माधुरी लसत कुंडलम। कुंडल कैसे हैं? बड़े चमक रहे हैं। फिर कुंडल का ही क्यों वर्णन करते हैं? और भी तो कोई सुंदरता भगवान की वर्णन कर सकते थे ना, कुंडल को ही क्यों ले लिया? कहते भगवान के गाल, इसी दामोदर अष्टक में आगे आएगा, मोहश्चुंबितम गोपी, गोपी यशोदा अथवा गोपियां राधा रानी आदि भगवान के गालों को चुमती है। लेकिन कभी कभार, सुबह शाम, लेकिन ये कुंडल सुबह से शाम तक हर बार गाल चुमते रहते हैं। कुंडल कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन गालों को मां यशोदा कभी कभी चुमती है प्रेम से समय समय के ऊपर, लेकिन ये कुंडल तो हर वक्त गाल के ऊपर बड़े लहरा रहे हैं। बोला चमक क्यों रहे हैं कुंडल? बोला भगवान के गाल चमकीले हैं, कुंडल चमकीले नहीं है। भगवान के गालों कितने चमकीले हैं कि कुंडल को प्रकाश दे रहे हैं। मकर कुंडल है, मकर कुंडल का मतलब कुंडल का आकार जो है मगरमच्छ जैसा है, लेकिन वो चमक रहे हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं ये भागवत के तीसरे स्कंद से कि भूषण भूषितम, आभूषण भगवान को सुंदर नहीं बनाते हैं, भगवान आभूषणों को सुंदर बनाते हैं। उनका भाग है आभूषण को जो भगवान के गले में पड़े। गोकुल भ्राजमानम, ये सुंदर रूप कहां देखने को मिलेगा? बोला केवल गोकुल में, और कहीं नहीं मिलेगा ये रूप। द्वारका में ये रूप नहीं मिलेगा। एक दिन तो रुक्मणी ने कृष्ण जी को कह दिया कि आपकी बाल लीलाओं को बहुत हमने सुनी है, हम देखना चाहती हैं। तो भगवान ने मंथनी हाथ में ले ली जिससे दही मंथन करते हैं, और छोटे से गोपाल बन गए। और मां रुक्मणी को इतना अच्छा लगा भगवान का ये बाल रूप, उसी की मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा हो रही थी, और वही मूर्ति गोपी चंदन के बड़े एक टुकड़े के अंदर नाव को बैलेंस करने के लिए बोट को कुछ लोग लेके जा रहे थे, और बोट कहीं अटक गई, और माधवाचार्य समुद्र के किनारे पे खड़े थे। माधवाचार्य ने उनकी नाव को, जो जहाज था फंस गया था, निकाला। उन्होंने कहा महाराज आपने बड़ा कृपा की हमारे ऊपर, हम आपकी क्या सेवा करें? बोला कहां से आ रहे हो? बोला द्वारका से। बोला फिर गोपीचंद है? बोला हां, दो बड़े गोपीचंद के टुकड़े हमने अंदर डाले थे जहाज को बैलेंस करने के लिए। उस टुकड़े को लिया और टुकड़े के अंदर से वो मंथनी हाथ में लिए हुए कृष्ण बाल गोपाल निकले। आज भी मध्व आचार्य, जो एक वैष्णव आचार्य है, उसका पीठ है, सेंटर है उड़पी में, और उड़पी में वही गोपाल हाथ में मंथनी लिए हुए खड़े हैं। तो ये गोपाल का रूप आज भी वहां जाके देखा सकता है, देखा जा सकता है। हाथ में मंत्री लिए और ऐसे खड़े हैं गोपाल जी। तो ये गोपाल का रूप जो है ये केवल गोकुल में देखने को मिलता है और कोई नहीं मिलता है। और गोकुल को क्या हुआ, भ्राजमानम। भ्राजमानम का मतलब गोकुल, गोकुल को प्रकाशमान कर दिया। पहले ही गोकुल भगवान श्री कृष्ण भागवत में अपने अवतार लेने से पहले योग माया के को कहते हैं गो गोपी भी अलंकृत। कौन सी गोकुल, जिसमें गोपियां हैं, गोप हैं, गाय हैं, इससे अलंकृत है, मीन्स डेकोरेटेड। तो पहले ही गोकुल बड़ी सुंदर है, लेकिन जैसे कृष्ण उधर पधारे हैं बाल लीला करने, गोकुल और गोकुल सुंदर हो गई है। गोपियां भी गोपी गीत में कहती हैं, वैसे तो वैकुंठ में रहती थी लक्ष्मी जी, जब से श्री कृष्ण ब्रज में आए हैं लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के ब्रज की गली गली में घूम रही। श्रीयता श्री, वो श्री लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ के आ गई। क्यों, बोले गोकुल में आज भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे हैं, तो वहां आके उसका आनंद ले रही है। गोकुल, गोकुल में आनंद हो रहा है। अब लीला शुरू करते हुए कहते हैं यशोदा भियूलू खलाद धाव मानम। यशोदा के भय से उखल से कूद के भाग रहे हैं, ये लीला शुरू कर रहे हैं। यशोदा का अर्थ कल बताया था, दूसरे को यश दे, हाँ गिलोरी दे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो यशस्व समग्रस्य, वो तो यश के आगार हैं। हाँ, छह चीजें जो भगवान में होती हैं उसमें एक तो यश है ना, तो यश तो है ही ना, सुंदरता है, यश है, वैराग्य है। तो यशोदा ने कौन सा यश दिया कृष्ण को, बोला भगवान श्री कृष्ण के पास सभी यश हैं, लेकिन भक्तों के द्वारा बंध जाने वाला यश नहीं था, ये यशोदा ने कृष्ण को दे दिया। ऐसा यश कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं हुआ था कि भक्त भक्त वश्यता, भक्त के वश में भगवान हो जाए। ये यश इस यशोदा गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। कैसी है ये यशोदा, नंद गेहिनी। नंद गेहिनी, गेहिनी कहते हैं गह, गहनी कहते, गह कहते हैं घर को। नंद के घरवाली है ऐसे तो ठीक है, लेकिन नंद के आगे अ लगा तो आनंद गहनी, ये आनंद का घर है। यशोदा आनंद का घर है, और आनंद सच्चिदानंद भगवान है जो यशोदा की गोद में खेल रहे हैं, ये आनंद का घर है यशोदा माँ। तो ये भक्ति जो है, उस भक्ति में भी वात्सल्य जो भक्ति है, जिसमें भगवान को बालक मान के स्वयं उसके माता पिता बन के उसका पालन पोषण करते हैं, इस वात्सल्य रस की परिकाष्ठा, हाईएस्ट लिमिट ऑफ वात्सल्य प्रेम इज दामोदर लीला। दामोदर जैसे रास लीला माधुर्य रस की क्लाइमेक्स है, तो वात्सल्य रस की हाइट है दामोदर लीला। भक्ति और अन्य धर्म के कार्य, ज्ञान पुरुषार्थ जो भी ये कर्म आदि, बहुत अंतर है। कोई कहे कि हमको जाना है उधर, सामने भगवान का धाम है, बीच में नदी है, कैसे जाओगे, बोलो जाने को तो तैर के जा सकते हो, नाव में जा सकते हो। तो एक कहता है मैं तैर के जाऊंगा, जाओ भाई, लेकिन तैर के जा रहे हो तो ध्यान रखना नदी के अंदर बीच में कहीं भंवर है और एक मगरमच्छ भी रहता है, जरा उससे बच के जाना। हां हां नहीं मैं जाऊंगा, आई एम स्विमर। दूसरे ने कहा तुम कैसे जाओगे, बोला मैं कहूंगा कन्हैया श्याम सुंदर, कन्हैया श्याम सुंदर नाव लेके आओ, मेरे को उस तरफ ले जाओ। और तुम ऐसे कन्हैया को बुलाओगे तो कन्हैया नाव लेके आएगा। और तुम्हारे को गोद में बिठा के नाव में बिठाएगा, वो नाव चलाएगा और तुम कन्हैया को देखते रहना और तुम भी उस तरफ पहुंच जाओगे। भक्ति ऐसी है जिसमें भगवान अपने भक्त को ले जाके पार पहुंचाते हैं, और ज्ञान आदि में स्वयं को तैर के जाना है नदी में, मगरमच्छ भी बीच में मिलेगा और कहीं भंवर में भी गिर जाओगे। और ये भक्ति, ये भगवत गीता के 12वें अध्याय का श्लोक है, भवामी निचरात पारत मई आवेशित चेतसा, भवसागर से मैं एकदम पार कर जाता हूं। कैसे? बोला गोद में बिठा के नाव में बिठाता हूं, नाव में मैं गोद में उठा के जाके बिठाता हूं मेरे भक्त को। तो ये भक्ति का ऐसा सुंदर मार्ग है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्त का उद्धार करते हैं। भक्त को कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान को बुलाने की जरूरत है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यशोदानंद गृहिणी दिवाली के दिन, दिवाली का दिन है, एक दिन दिवाली के बाद इंद्र यज्ञ होने वाला है। श्री कृष्ण की आयु 3 साल है, 3 साल का लाला है गोपाल, और यशोदा ने सारे घर में काम करने वाली दासियों को अन्य कामों में लगा दिया, नियक्तासु दासीसु, दासियों को और किसी काम में लगाया। बोला लाला के कपड़े समेट के रखो, लाला के लिए तुम जरा कमरे की सफाई कर लो, पलंग ठीक कर लो, बाहर से जरा फल लेके आ जाओ। तो कहा नंदरानी आप क्या करेंगी? स्वयं दधी मंथनम, मैं स्वयं दधी। स्वयं शब्द क्यों लगाया? बोला ये तो रानी है, नंदरानी है, इसको दही मंथन करने की जरूरत नहीं, हजारों दासियां हैं। लेकिन आज यशोदा कहती है कि मैं अपने हाथ से मक्खन निकालूंगी, अपने हाथ से मक्खन। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं 100 गायों का दूध निकाल के 10 गायों को पिलाते थे, और 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाते थे। उस गाय का दूध, पद्मगंधा गाय का दूध, वो मां यशोदा स्वयं अपने हाथ से चूल्हे के ऊपर चढ़ाया है और ऊपर बैठ के उसको गर्म कर रही है। चूल्हे के ऊपर दूध छोड़ के दूसरा काम करने नहीं गई, वो दूध को आंख से देख रही है कि वो उबल रहा है। मां के हृदय का प्रेम आंख के द्वारा दूध में जा रहा है, इसलिए कहते हैं मां के हाथ का पकाया और किसी भाग्यशाली ने खाया होगा उसको मालूम है जो स्वाद मां के हाथ का है वो दुनिया के और किसी भोजन में नहीं आता है, क्योंकि उसका प्रेम उसमें जाता है और प्रेम आंख से जाता है। मां अपने हाथ से दूध को उबाल रही है और दूध के ऊपर मलाई आ गई है, तैयार हो गया है, उतारा है, जामुन दिया है मिट्टी के मटके में, रात को अच्छी तरह से ढक के रखा है वो कम्बल आदि से ताकि सर्दी में सुबह दही जम जाए। तो मां ने दूसरी दासियों को किसी और काम में लगा दिया पूरे उत्सव की तैयारी में, और स्वयं दधी मंथन करने लगी। बोलो क्यों? नंदरानी को बोला एक तो बहुत प्रेम था कन्हैया से, उसी के लिए अपने हाथ से अपने प्रेम से मक्खन बनाना चाहती थी, और दूसरा ये शंका हो गई थी कि रोज गोपियां कहती है हमारे घर में मक्खन चुराता है, तो क्या हमारे घर का मक्खन अच्छा नहीं है क्या? एक बार गोपियां आई यशोदा को, कहा आपका लाला हमारे घर मक्खन चुराता है। किसने बोला इतना छोटा है कितना खाएगा, दे दिया करो ना भाई, आपके घर चुराता है तो दे दिया करो ना। गोपियां कहती है हम कहती हैं आओ लाला मक्खन खाओ, तो कहता है कि मैं भीख मंगाऊं क्या, मेरे बाप के घर में 9 लाख गाय हैं, मैं तुम्हारा मक्खन क्यों खाऊंगा? देती है तो कहते हैं भीख मंगा थोड़ी हूं मैं बेघर हूं क्या, मेरे बाप के घर में 9 लाख गाय हैं। बोला फिर हमारे घर में चोरी क्यों करते हैं? बोला मेहनत करके खाता हूं। अपनी मेहनत करके खाता हूं। इस बात पे हमको एक याद आती है, यहां आपके तो अभी यहां भी ऐसे काले लोग करने लगे हैं कुछ, लेकिन आदिवासी होते हैं इंडिया में, आदिवासी कहते हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर मुझे कहता है आदिवासी जाते हुए मोटरसाइकिल में लोगों को लूटते हैं, तो जब आदिवासी को देखता है मोटरसाइकिल वाला तो घड़ी भी देता है पर्स भी देता है, वो सब लेने के बाद उसको और मारता है। फिर पुलिस वाले ने बोला जब उसने सब कुछ दे दिया फिर मारा क्यों? बोला मेहनत करके खाएंगे, मुफ्त का थोड़ी खाएंगे। कुछ तो मेहनत करो ना, मुफ्त का तो मुफ्त का तो गोपाल बोलते हैं मुफ्त का नहीं खाना है मुझे मक्खन, मेहनत करके खाऊंगा। तो मां ने कल हमने चर्चा की थी कि मां गीत गाने लगी। सुबह सवेर उठी, तैयार होके मंथन के लिए बैठने से पहले क्या करने लगी? यानी यानी गीतानी बाल चरितानी, गोपाल के बाल चरित्र का गीत गाने लगी। कैसा गीत गा रही थी कोई पूछे तो? यशोदा को ऐसे श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि स्त्रियों को गुनगुनाना आता है और जब भी उनका मन करता है कुछ भी गा सकती है, वो रोती है तब भी कुछ गाती है, स्त्रियों में ये विशेष, वो भी सुर में गाती है, रोना भी उनका सुर में होता है। तो क्या गा रही थी? बोला एक लीला ये भी याद आ गई, यशोदा बैठी है, घूंघट निकाला हुआ है, लाला पीछे से आया, घूंघट उतारा, चुटिया को पकड़कर और रोने लगा और चुप नहीं करे। गोपियों ने बोला लाला रो क्यों रहा है? बोला वो क्या है ऊपर? तो ऊपर तो चांद देखा। तो गोपियों ने कहा ये देखो नीला समुंदर है, उसके अंदर सफेद हंस है। बोला इस हंस को लाके दो खेलेंगे, हमको हंस लाके दो हम खेलेंगे। तो हंस तो नहीं ला सकते, नहीं लाके दो खेलेंगे, अब चुप नहीं करे। तो यशोदा ने कहा ये गोपियां झूठ बोल रही है, ये हंस नहीं है, ये मक्खन का लौंदा है, ये मक्खन है। बोला मक्खन खाऊंगा, लाके दो मक्खन खाऊंगा मैं। बोला ये मक्खन का लौंदा इतना बड़ा कैसे हो गया? दूध कहां से आया? बोला दूध के सागर का मंथन हुआ था। बोला दूध तो गाय से आता है, गोपाल बोलता है। बोला गाय से, जो जिसने गाय में दूध पैदा किया है क्या वो गाय का दूध का समुद्र नहीं बना सकता क्या? हाँ, तो दूध के समुद्र का मंथन हुआ उससे ये बड़ा मक्खन का लौंदा निकला है। तो मैया मैं खाऊंगा, मेरे को लाके दो। माने बोला बेटा ये नहीं खाएंगे क्योंकि इसके अंदर विष लगा हुआ है, देखो काला निशान है ना, आपको बताया था समुद्र मंथन किया था तो पहले विष निकला था। मां पूरी कथा बता रही है, यही तो पुराने जमाने में दादी और माता का बड़ाई होती थी कि रामायण भागवत बच्चों को 3-4 साल में सुना देती थी। ये समुद्र मंथन की पूरी कथा यशोदा ने कृष्ण को बाल बचपन में सुना ली थी। आप लोग माता जी बच्चों को क्या सुनाती है? टीवी के सामने टिका देती है, आपका जान छूट गया हा? और उठेगा तब दो माँ आपको मारेगा, मम्मी इधर मारो के इधर मारो, यही सीख के आएगा वहां से हा? भूत बना रहे हो उनको। अरे रामायण की कथा सुनाओ, भागवत की कथा बच्चों को सुनानी चाहिए। ये माँ यशोदा मंथन फिर भी कहता नहीं मैं तो माँ ये खाऊंगा, ये माखन नहीं, विष लगा हुआ है इसमें, मैंने आपको बताया ना पहले इसमें विष निकला था। तो इतना ये कथा जैसे चांद खिलौना मेरे को दे दो मैया, ये मैया जैसे गीत गा रही है, कई कृष्ण के बाल लीलाओं के ऐसे अन्य और गीत हैं जो लाला के घर में होते हैं उनको गा रही थी। और फिर कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, भागवत के तीसरे श्लोक के ऊपर माँ ने सुंदर साड़ी पहनी हुई है सेफ्रान कलर की सिल्क की, और माँ के उस साड़ी और बालों में मालती के फूल लगाए हैं, और माँ के हृदय में इतना स्नेह है कृष्ण के लिए, कृष्ण है सामने सामने पलंग के ऊपर सोया हुआ है, और शुभ्रू का मतलब आंखों से उसको बार बार देख रही कि उठोता नहीं है, अभी उठा तो नहीं है, अभी तो सोया हुआ है ना, आंख से देखती है फिर आंख देख, तो भ्रू जो कितने सुंदर है माँ यशोदा के, खोल के आंख देखती है हाँ सोया हुआ है लाला, फिर वापस मंथन करने लगती है। इतना स्नेह है कि उसकी छाती के अंदर दूध चूरा है, बाहर निकल रहा है अपने आप कृष्ण की या नाम आते ही, इसके ऊपर कर चर्चा की थी, और बड़े परिश्रम के साथ रस्सी को खींच रही है, और इसके लिए कंकण और कुंडल माँ यशोदा के भी हिल रहे हैं, और ये सब हिलते हुए आगे ये तो हुआ मां का दर्शन। प्रभुपाद ने इस चीज के ऊपर लिखा है कि जो कृष्ण को बाल समझता है उसको यशोदा के इस रूप का ध्यान करना चाहिए, और यशोदा के पास में खड़ा होकर देखना चाहिए वो लाला को कैसे खिला रही है, उसके लिए कैसे सेवा कर रही है, तो उसके मन में वात्सल्य प्रेम का उदय होगा। अब जब इतने प्रेम और स्नेह के साथ मां मक्खन बनाए और कृष्ण के गीत गाए और कृष्ण सोया रहे तो इसका मतलब कृष्ण को प्रेम है ही नहीं मां से। तो कृष्ण जागा, भगवान सोता थोड़ी है, वो सोते हुए सारे संसार को चलाता है। शांतकारं भुजग शयनम, सोया हुआ है। कैसे सोया हुआ है? शांतकारं, कैसा आकार है? शांत, आंखें बंद पड़ी है। कहां सोया है आंखें बंद करके? भुजंग शयनम, सांप के ऊपर सोया हुआ है। सांप के ऊपर सोया हुआ है और आंखें बंद करके शांत सोया हुआ है। क्यों जी, कोई सांप के ऊपर सो सकता है ऐसे शांत? भुजंग के ऊपर शांत सोया हुआ है और फिर भी सारा संसार वो चला रहा है। तो गोपाल, गोपाल के लिए लिखा है, तान स्तनस्य काम कृष्ण को मां के दूध पीने की कामना हुई। मां कृष्ण के लिए मक्खन बना रही है और कृष्ण मां के दूध। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पास लिखते हैं कि जो आपत काम है भगवान, जिसकी कोई कामना संसार में है ही नहीं, उसको आज मां के दूध पीने की कामना हुई है। आपत काम, ये कामना हुई है। तान स्तनस्य काम आसाद्य, तो क्या करता है? कहां है मां? उठा, आंखें मली, पलंग के ऊपर ऐसे हाथ मारा, मैया 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 तो है नहीं, तो आवाज सुनाई दिया। आवाज क्या सुनाई दिया? यशोदा के जो चूड़ियां हैं छन 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 हो रहा है, और जो मटकी में मंथनी है वो बहुत दही गाढ़ा है, बड़ा कीर्तन हो रहा है। साथ साथ गोपाल गोपाल गाया जा रहा है। जहां कीर्तन होता है, भगवान कहते हैं मां तो मैं वहां आ जाता हूं, जत्र गायंती मत भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। अब तो कन्हैये को वहां, यहां लिखा है मंथन तिम, जो मंथन कर रही थी मां। कौन मंथन कर रही थी? अरे तो गोपियां ही मंथन कर, बहुत सारी गोपियां घरों में कर रही थी। बोले वो नहीं, जननीम हरि, ये जो हरि की जननी है, ये जननी शब्द लिखा है, इसका मतलब कृष्ण को यशोदा ने जन्म दिया है, पाल नहीं रही है, जन्म दिया है। जननीम हरि, हरि का मतलब जो मन हर के और सुख दे अपने भक्तों को। दो अर्थ लिखे हैं हरि के, बहुत से अर्थ हैं, लेकिन चैतन्य चरितमृत में एक अर्थ है जो भक्तों का दुख हरण कर ले, और दूसरा अर्थ है प्रेम दे के मन हर ले। इतना प्रेम दे के मन हर ले उसको हरि बोलते हैं। तो ये कौन है? जननीम हरि, ये वो मां यशोदा है जिसका मन कृष्ण ने पहले ही प्रेम से हर लिया। उस जननी हरि को देखा, आया कृष्ण उतर के पलंग से, आए कहां? आए जहां मां मंथन कर रही थी। लेकिन मां इतनी गाने में तलीन थी, इतनी मगन थी गाने में, आंखें बंद थी, कृष्ण का ध्यान कर रही थी और शरीर से माखन का मंथन कर रही थी। शरीर भी भगवान की सेवा में, जबान भी भगवान के गीत गाते हुए भगवान की सेवा में, और मन भी भगवान की सेवा में। इसको भक्ति बोलते हैं। शरीर भी, मन भी, वचन भी, सब भगवान की सेवा में। अब कृष्ण ने आके खड़े होके देखा, अरे मां मैया भूख लगी है, दूध पिलाओ मैया। लेकिन मैया आवाज भी नहीं सुन रही है मंथन के बीच में। तो लिखा है क्या किया? ग्रहित्वा दधि मंथानम, ग्रहित्वा पकड़ लिया, दधि मंथानम, जो दही को मंथन करने का लकड़ी था उसको पकड़ लिया कन्हैया ने। लकड़ी पकड़ लिया तो क्या हुआ? नेषिद्ध, नेषिद्ध काम बंद हो गया मां का। मंथनी पकड़ ली तो रसी हिल नहीं रही थी। कैसे आए थे रसी पकड़ने के लिए? तो लिखे प्रीतिम आवहन, प्रीत के घोड़े के ऊपर चढ़ के आए थे। प्रेम के कारण आए थे, इतना माँ से प्रेम था, माँ के दूध पीने के लिए आए और उसका मन सनी खड़ा बंद कर दिया। ये डर नहीं था कि माँ बोलेगी क्यों मेरा काम रोक रहे हो, उसने कोई ऐसे प्रेम के घोड़े के ऊपर चढ़ाए थे कि मेरी माँ देखेगी सब काम बंद करके मेरे को गोद में ले लेगी। तो मनसनी को पकड़ लिया, काम को रोक दिया, और जैसे ही काम को रोका यशोदा माँ ने कन्हैया को देखा और देखते ही मां मुस्कुराई। मां क्यों मुस्कुराई? यशोदा इसलिए मुस्कुराई कि बहुत इंटेलिजेंट है, देखो मेरा ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षण किया, हाउ मच इंटेलिजेंट ही इज, मेरे को मेरा काम रोक दिया, बुद्धिमान है बच्चा। मां को बड़ी खुशी हुई और इस बात की भी मां को खुशी हुई कि इतना मोटा मंथनी है उसको पकड़ लिया और बंद भी हो गया, इसका अर्थ मेरा बच्चा शक्तिशाली हो रहा है, मेरे बच्चे को दूध दही मक्खन से बहुत बड़ा शक्ति आ रहा है। तो मां अपने बच्चे को जब देखती है कि उसका हेल्थ अच्छा है तो बड़ी खुश होती है, तो मां को बड़ा आनंद आया। लेकिन मां अभी मुस्कुरा ही रही थी तम अंकम आरूढ़म, कृष्ण तो उनकी गोद में अपने आप चढ़ गया। मां बैठी थी ऊपर, वो मंची होती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर कृष्ण ऊपर चढ़ गया, पांव रख के मां के घुटने के ऊपर और छाती के पास आके बैठ गया। तम अंकम आरूढ़म अपायत स्थनम, जैसे ही ऊपर आया, मां का तो पहले ही दूध चू रहा था, मां ने कुंचली ऊपर करके और स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया, मां ने काम को रोक दिया, सब काम मंथन का रुक गया। और जब दिया तब लिखते हैं स्नेह सुनितम सस्मितम, क्योंकि मां को बड़ा आनंद आ रहा था बालक को देखकर, स्नेह के साथ मुस्कुरा रही थी बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही थी, तो बच्चा भी मां को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब मां और बच्चे के बीच में जब दूध पिला रही थी तो बड़ा प्रेम का एक रस बह रहा था दोनों के बीच में, गोपाल मुस्कुरा रहे हैं मां को देखकर और मां मुस्कुरा रही है गोपाल को देखकर। इसको मनोविज्ञान में कहते हैं बच्चा जब मां का दूध पीता है तो वो दूध इतना उसको मीठा लगता है और पिलाने वाली के मुंह को देखता है और पिलाने वाली उसके मुंह को देखती है तो फिर मुस्कुराता है और फिर वो बच्चा हजार स्त्रियों में अपनी मां को पहचानता है। छोटा सा बच्चा अपनी मां को पहचानता है कि नहीं पहचानता है? कितनी स्त्री में तो कब उसको पहचान होती है? जब दूध पिलाती है तब। इसलिए पुराने जमाने में माताएं कहती थी बेटा मेरे दूध की लाज रखना, और ये कुंती महारानी ने कह के भेजा था, कृष्ण के साथ संदेश भेजा था, कृष्ण अर्जुन और भीम को कहना क्षत्रानी जिस दिन के लिए अपने पुत्रों को दूध पिलाती हैं वो दिन आ गया है। ये संदेश कुंती महारानी ने भेजा था कृष्ण के साथ कि भीम और अर्जुन को कहना कि जिस दिन के लिए क्षत्रानी अपने बेटे को दूध पिलाती है उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। इसलिए भगवान कौनते अर्जुन को जब कहते हैं तब कहते हैं तुम कहते हो कि लड़ोगे नहीं, कोई तू नहीं लड़ोगे, क्या कुंती की बात को भी तुम रोक लो टाल दोगे कि तुम्हारी मां ने क्या बोला है, उसके दूध की लाज नहीं रखोगे? एक बेटे ने कहा आजकल की मां को, मां मैं तेरे दूध का ऋण चुकाऊंगा। मां ने कहा बेटा पहले दूध वाले का तो ऋण चुका दो बात। मेरे बाद में चुकाना, जो दूध वाला रोज आता है जो छोटी विक्की पे इसकी तो उधार दे दे। हरे कृष्ण। तो ये जो मां और बेटे के बीच में दूध पिलाने के समय जो रिश्ता डेवलप होता है ये बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। ये माताओं को शिक्षा दे रही है यशोदा मैया, 3 साल के लाला को गोद में बिठा के दूध पिला रही है। तीन साल का कृष्ण है और गोद में बिठा के दूध पिला रही, और कृष्ण कभी यशोदा को भूला नहीं। एक बार अचानक माखन दे दिया देवकी ने मथुरा में, कमरा बंद करके बैठ गए अंदर, खाया कुछ नहीं। उद्धव ने हाथ पकड़ा, कहा कन्हैया क्या है माँ, देवकी बड़ी दुखी है, कुछ खा नहीं रहे। बोला माखन देखता हूँ, यशोदा याद आती, माखन बांसुरी वो सब मैं ब्रज में छोड़ के आया। और ब्रज की इतनी याद आई, उद्धव का हाथ पकड़ के कहा कि उद्धव अब तुम ब्रज में जाओ, ब्रजवासी मेरी जुदाई सहन नहीं कर सकते हैं, तुम जाके उनको मेरा संदेश पहुंचाओ। ये केवल कृष्ण, तो यहां मां यशोदा से कृष्ण का इतना गाढ़ आलिंगन और प्रेम मां स्तनपान करा रही है। तीन साल, पांच साल तक बच्चे को जो दूध पिलाती है मां, उस मां को पद्मनी बोलते हैं, वो पद्मनी मां कहलाती है। एक साल कामनी होती, तीन साल वाली का नाम भी अच्छा है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पुलाते हैं उसको क्या कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, जो पिलाती नहीं है वो पिशाचनी है, दूध ही नहीं पिलाती है बच्चे को। और आजकल तो पता नहीं किसने दिमाग खराब किया है स्त्रियों का, बच्चे को दूध पिलाने से सुंदरता खराब होती है, इसलिए दूध मत पिलाओ। भगवान ने दूध जन्म से पहले मां के स्तन में बच्चे के लिए तैयार किया, और मां बच्चे को दूध नहीं पिलाती। ये बात हम सब जगह बताए हैं, आप तो भी बताते हैं माताओं को, नहीं तो छोटी बच्चियों को प्रेरणा मिलेगी इससे। जिसका दूध पीता है बच्चा उसी से प्रेम करता है, ये सिद्धांत है। अब जब बच्चे को आजकल दूध कैसे पिलाते हो माता जी लोग, हाँ आपको किसमें पिलाया था अभी तक याद है कौन, किसने बोला जय। अब देख लो सुन लो, जब बाटल बच्चे के मुंह में दोगे तो बच्चा बाटल को देखेगा, मुस्कुराएगा, बड़ी सुंदर है, बड़ा मजा दे रही है, ऐसा बाटल से प्रेम हो जाएगा, 10-12 साल का कोको कोला की बोतल लेके बाजार में घूमेगा, 18-20 साल में जानी वाकर को उठा के घूमेगा, क्योंकि बोतल ही दिखाई है तो उसको तो बोतल ही दिखेगी, और 45 से पहले अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल को देखेगा, और तैयारी बोतल के साथ आया और बोतल के साथ जाएगा। इसलिए माता और प्रेम से बच्चों को दूध पिलाया करो, बड़े प्रेम से दूध पिलाया करो। ये यशोदा माँ कन्हैया को कोई दूध की भूख नहीं है, अभी थोड़ी देर में कन्हैया कहेगा, क्या इसके बाद आता है, मां और बेटे के बीच में प्रेम का रसाध्वादन हो रहा था, अचानक मां ने आवाज सुना, क्या हुआ, दूध उबल के नीचे गिर रहा है आग में, चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ दूध वो नीचे गिरा, उसका आवाज सुना मां ने, तो मां ने बच्चे को देखना छोड़ दिया और दूध की ओर देखा, दृष्टि हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत है, नजर हटी नहीं दुर्घटना घटी, भगवान से नजर हटी नहीं एक्सीडेंट हुआ नहीं, कोई ना कोई अब होने वाला है प्रॉब्लम। मां ने क्या किया, यशोदा ने कृष्ण को ऐसे ही दूध पीते को नीचे रखा और भागती हुई गई दूध को आग से उतारने के लिए। जो चीज कृष्ण के सेवा में आती है वो दूध भी साधारण नहीं है, वो भी चेतन है, जड़ नहीं है। उस दूध ने देखा कि मैं आग के ऊपर इतनी तपस्या कर रहा हूं कि कृष्ण मुझे पिएगा, लेकिन कृष्ण तो मां का दूध पी रहा है, मां का दूध सता समाप्त होगा नहीं, और ये पिएगा वो तो मैं क्या करूंगा जी के, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को आग में जला के भस्म कर दूं तो अच्छा है। मां बेटे को साथ क्यों नहीं ले गई, सनातन गोस्वामी ये प्रश्न उठाते हैं कि छोटा सा बच्चा था साथ ले गई होती ना, फिर स्वयं उत्तर देते हैं कि बच्चे को उठा के दूध उतारने जाती तो दूध तो दो हाथों से उतारना था, तो दो हाथों से कपड़े से पकड़ के दूध उतारना था, और दूध गर्म उफन रहा था बच्चे को लग जाता तो, पहले तो ये भय था, दूसरा ये भी भय था कि मां बच्चे को ऐसे छाती से लगा के पहले उठा के जाती थी, बच्चे का मुंह मां की छाती की तरफ हुआ करता था, आजकल बच्चे को थैली में डाल के मुंह केंगरू के बच्चे की तरह बाहर या पीठ के ऊपर जैसे सब्जी की बोरी डाली है, अरे बच्चे को बोलते दुनिया देखो मेरे को मत देखो तो मुझे छोड़ के बाकी सब ये क्या ऐसा कुछ था नहीं। मां ने बच्चे को नीचे छोड़ दिया। जैसे ही बच्चे को नीचे छोड़ा कृष्ण ने कहा मैं क्षीर सागर को छोड़ के आया हूं और थोड़े से दूध के लिए मां मेरे को नीचे छोड़ के चली गई। मैं कोई दूध का भूखा हूं क्या? मैं तो क्षीर सागर में रहता हूं, भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर छोड़ के आया हूं और यहां मां थोड़े से दूध गिर रहा है मुझे छोड़ के चली गई और मैं भूखा। अब कृष्ण चुप करके बैठे रहे तो प्रेम तो नहीं है ना, अब कुछ तो करना चाहिए ना। क्या किया? संजात कोप, क्रोध आ गया। अरे शांताकारम को क्रोध कैसे आ गया? आपत काम को काम हुआ, शांताकारम को क्रोध आया। ये सनातन ये लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ये बड़ा अद्भुत ये पूरा है। संजात कोप, कृष्ण को क्रोध आ गया। अब गुस्से में क्या कर रहे हैं? अरुण अद्र, अपने दांत जो हैं वो लाल उनको सफेद, अब सॉरी अपने होंठ लाल उसको सफेद दांतों से दबा रहे हैं। स्मृत अरुण अधरम, लाल लाल जो होंठ है उनको दांतों से दबा रहे हैं। बोला क्यों दबा रहे हैं? पहले तो कह रहे हैं कि क्रोध मुझे आया है, मेरी भी गलती है, काय के लिए मैं काम की इच्छा की दूध पीने की, मैं तो शांत हो रहता तो अच्छा था। तो क्या मेरे को काम आया का मतलब रजोगुण आया और लाल रजोगुण की निशानी है और सफेद दांत सतोगुण है, सतोगुण से रजोगुण को दबा रहे हैं। आचार्य इसका दृष्टांत कि दांत सतोगुण है और दांत को द्विज बोलते हैं, मतलब ब्राह्मण है, सतोगुण है और होंठ को दबा रहा है और कहते क्रोध मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी क्रोध आ ही गया तो क्रोध से और क्या होना चाहिए? संधस्य दधि दधि, हाँ जैसे क्रोध आया तो झूठे आंसू भी निकाले, मिश्र अश्रु, बच्चा तो रोएगा, अभी रोना शुरू किया, रोते रोते कहता अभी दिखाता हूं मां को, मेरे को छोड़ के गई है ना, अभी दिखाता हूं। क्या करेगा? दधि मंथन भाजनम, ये जो दही का मटका है ना मेरी मां का, इसको अभी मैं तोड़ के दिखाता हूं। रोते हुए क्या उठाया? अश्मना रहो, पत्थर को उठाया, पत्थर था उसको उठाया, जो सिला मसाला पीसने वाला पत्थर था उसको उठाया और उठा के क्या किया? कहते बड़ी चतुराई के साथ नीचे जहां भरा हुआ मटका है ना वहां मारा, लेकिन हाथ को भी ऐसे पकड़ा के मेरे कंगन का आवाज बाहर मां सुने ना, था जैसे मटका फूटा दही बहा, दही बहा तो थोड़ी देर बच्चे को बड़ा मजा आया, अरे बहुत अच्छा दही बह रहा है, गुड गुड, और नाचा नाचा, लेकिन मां की याद आई कि यह मटका तो बहुत पुराना है, यशोदा की सास के जमाने का मटका है, मां इस मटके के टूटने के ऊपर मेरे को सजा जरूर देगी, तो डर लगा, डर लगा। तो अभी मां को क्या बताना चाह रहा है? बताना यह चाह रहा है जघास हाय अंगम, अब मैं भूखा हूं, मुझे भूखा छोड़ के चाहिए, तो क्या करना चाहिए? माखन जो अंदर पड़ा है कल वाला उसको उठा के खाता, तो मां देखेगी कि माखन खा रहा है, भूखा है, मैं कहूंगा मैं भूखा हूं, मैं क्या करूं? तो जाके माखन उठाया, कहां? दूसरे कमरे में चला गया, जहां मंथन होता वहां से निकल के दूसरे कमरे में चला गया और वहां एक उखल उठाया, वो तीसरे इसके बाद का श्लोक है, वहां जाकर माखन को खाने लगा। कृष्ण वहां माखन खा रहा है और यहां मैया ने क्या किया? उतार्य गोपी सुश्रितम पयः पुनः, मां तो भागती गई, जल्दी से आग को बाहर निकाला, थोड़ा पानी का छंटा लगाया और छींटे लगाने से दूध नीचे बैठ गया, तो माँ वहां से वापस लौटी और जैसे ही वापस आई तो दधी अमत्रकम, मिट्टी का जो दही का मटका था उसको टूटा हुआ भगनम विलोकया, देखा टूटा हुआ है ये मिट्टी का दही का मटका टूटा हुआ है, माँ ने आते ही देखा और जैसे ही उसको देखा तो माँ ने मुस्कुराया जहाज ऐसे उंगली उठाई, क्या किया स्वसुतस्य कर्म तज, अपने ही बेटे का काम है ये, अपने बेटे का काम है, मां को बड़ा मुस्कुराना आया, मां हंसी आई कि कैसा देखो थोड़ी देर में इतना शरारती हो गया, इतना नाटी हो गया, थोड़ी देर नीचे छोड़ा ये मटका ही तोड़ दिया। और जैसे ये देखा और ये कहां गया, यहां है ही नहीं, तम चापी न तत्र पश्यति, और वहां है ही नहीं, मटका टूटा हुआ है, दही बह गया और यहां कन्हैया है ही नहीं, कहां चला गया। तो मां देखती है कि कौए उड़ रहे हैं, बंदर खड़े हैं, अरे कमरे में बंदर और कौए कहां से आए। मां ने थोड़ा अंदर जाके देखा तो देखा उलू खला अंगरे ऊपरी व्यवस्थितम, उखल को उल्टा करके उसके ऊपर ठीक तरह से बैठा हुआ है कन्हैया। मां ने देख लिया क्या कर रहा है उखल के ऊपर बैठ कर, मरकाय कामम दधिम सिची स्थितम, वो बंदरों को दही और मक्खन खिला रहा है। मां ने देखा बंदरों को दही और मक्खन खिला रहा है, मां को याद आया पहले भी कई बार बंदरों को खिलाते हुए मैंने देखा है, गोपियों ने कई बार शिकायत की है, कभी आता है कन्हैया बोलता है मेरे मेहमान आए हैं अयोध्या से, कुछ दूध दही दे दो, हम दूध दही देती हैं, देखती हैं कहां है मेहमान तो बंदरों को खिलाता है, हम बोलते ये बोला यही तो अयोध्या के मेहमान है, यही तो राम के समय भगवान राम के संग गए थे रावण से लड़ने के लिए, सीता का पता लाए थे, तब तो राम जी ने इसको रुपया भी नहीं दिया था, कुछ था भी नहीं, भगवान वनवास में थे। अभी भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा को नहीं भूले हैं, बड़े प्रेम से देखो मक्खन खिला रहे हैं जी भर के उन बंदरों को, लो ये पुराने सेवक हैं हमारे, भगवान बंदरों को भी नहीं भूलते हैं तो कोई आदमी भगवान की सेवा करेगा उसको कैसे भूलेंगे, बंदरों को नहीं भूले हैं भगवान, प्रेम से खिला रहे हैं। और फिर चुरा के, क्योंकि चोरी करके गए, चोरी कर रहा है, अब चुरा के जो मक्खन दे रहा है इसलिए भयभीत इधर उधर देख भी रहा है कहीं मां आ तो नहीं रही है, ऐसे विवलेक्षण आंखें इधर उधर देख रहा है कहीं मां तो नहीं आ रही, पीछे आवाज होता है उसको देखता है, लेकिन मां ने उसको देख लिया, निरीक्षय मां ने देख लिया, और देखने के बाद मां ने क्या किया, अपने सत्सुतम अपने सुत को देख लिया, देखने के बाद नहीं बहुत आस्ते से पीछे लाठी हाथ में लेकर और यशोदा अंदर कमरे में घुसी। जैसे ही यशोदा कमरे में घुसी कृष्ण ने देखा और कृष्ण उखल से कूदा, और ये सत्यव्रत मुनि कहते हैं यशोदा भियोलूखला दधावमानम, यशोदा के भय से उगल से कूद के भागा। तो यहां तक की लीला पहले समझेंगे तब समझ में आएगा कि उखल से वो कूद के क्यों भागा था, क्योंकि मटकी फोड़ी थी, दही की मटकी फोड़ के आया था और मक्खन चुरा के बंदरों को खिला रहा था, ये दो गलतियां की थी, इसलिए मां लाठी हाथ में लेके पीछे आ रही थी उसके भय से। और इस दर्शन को देखकर कुंती महारानी उस दिन गई हुई थी वसुदेव के घर में, ऐसा उस दिन कुंती महारानी गई हुई थी गोकुल में, और कुंती महारानी ने ये दर्शन किया था, इसलिए कुंती अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि भय जिससे भयभीत होता है, काल जिससे भयभीत होता है, आज उसको मैंने गोपी से भयभीत देखा और वहां आंखों से मसल के रो रहा था। तो ये मां ने मां को देखकर क्या किया, उखल से कूद के और भागे, आज भागने दीजिए कल पकड़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा घूमने दीजिए, 8:30 हो गए, हरे कृष्णा। आगे की कथा कल 9 श्लोक तक हम कल 9 श्लोक से आगे पढ़ेंगे, तब दूसरा श्लोक आएगा दामोदरष्टक का, रुदंतम उसके बाद आएगा, और उसके बाद 3 श्लोकों की अलग प्रार्थना है उसकी चर्चा करेंगे। तो आगे जैसे भगवान की इच्छा होगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।